एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा
कि आज के संसार में हर आज के संसार में और कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है।
जरा गौर करें, थोड़ी सामाजिक बात कह रहा हूं कि किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया, कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। किसी के लड़का नहीं है तो इसलिए दुखी है, किसी के लड़का है तो वो लड़का से ही दुखी है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। कैसी है लीला भगवान की,
कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का।
सब दुख सहन हो जाते हैं, सबसे बड़ा दुख होता है शरीर का दुख, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर में कोई कष्ट है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है।
हर अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है,
मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है,
किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है।
अंत में आ जाइए उसी जगह, गौर करते हैं कि जिस समय महाराज प्रतीक और इनकी अर्धांगिनी पुत्र न होने के कारण दुखी हो जाते हैं, तो मन में सोचते हैं अब भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। और एक बात का ध्यान और रखना, जब दुनिया में कोई अपना दिखाई नहीं देता है, जिस डाली को प्राणी पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, जिस दरवाजे की ओर देखता है वो बंद नजर आता है, तब अंत में भगवान का ध्यान आता है। तो दुखी होने के बाद भगवान की तपस्या की इन्होंने, और वो भी तपस्या किनकी की, गंगा जी की। गंगा जी की,
कीनो गंगा जी को ध्यान,
हरे दोनों ने रटने लगा।
गंगा जी का भजन करते हैं, गंगा जी की तपस्या करते हैं, और उस तपस्या में
दीनी तन की खबर विसारी, दीनी तन की याद विसारी, पाप करे हमने क्या भारी,
किन से मन की हरे कथा कऊ सारी, रे मेरे भाई न कोई संतान, हाय दोनों
गंगा जी की सेवा में, गंगा जी की तपस्या में।
हाय बरसे सी बीत गई मन में,
हाय बरसे सी बीत गई मन में, गंगा जी के सिर्फ भजन में। समय गंगा सामने पहुंचती हैं और कहती हैं, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े मागन हैं और तुम्हारे इस त्याग को निहार करके हम खुश हैं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो पति और पत्नी गंगा जी से अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ करके और कहते हैं, मैं केवल तुमसे ये मांगने आया हूँ कि मेरे घर में पुत्र पैदा हो जाए, कुछ और भी कहना चाहता हूँ। गंगा जी कहने लगी, हे महाराज प्रतीक, निसंकोच कहो, क्या कहना है तुमको? जवाब दिया, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ मेरे पुत्र पैदा हो और आप हमारे पुत्र की पत्नी बने, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गंगा जी कहने लगी, ठीक है, अगर तुमने ये कहा कि हम तुम्हारे पुत्र की पत्नी बने, ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ, तुम्हारे मन की मुराद अवश्य पूर्ण होगी, मैं तुम्हारे पुत्र की पत्नी अवश्य बनूंगी। ये बात कहने के बाद गंगा जी चली गई और जब गंगा जी चली गई, लौट करके पति पत्नी घर चले आए। देखिए गंगा जी का दिया हुआ वरदान। अंत में वृद्धापन में आंगन में भोए कयोतारी, जो शांतनु के पिता थे, इन्होंने एक दिन शीशा में अपने चेहरा को देखा तो सर पे कुछ बाल सफेद निहार करके, मान लीजिए बालों ने उनसे एक संकेत, एक इशारा किया कि बालों ने कहा
कहा इशारे में कि अब बाल भाव न धरो राज।
लगता था कि बालों ने ही संकेत किया उनसे,
बालों ने कहा इशारे में अब बाल भाव न धरो राजन। है बाल बाल के साथ काल बालन को ख्याल करो राजन।
हमारे ऊपर चौथापन है, हमारे ऊपर वृद्धावस्था है और बुढ़ापे में भगवान का भजन करना ही अति आवश्यक हुआ करता है, तो संसार की मोह माया को छोड़ करके और हमें परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर का भजन करना चाहिए। क्योंकि सब धोखा दे जाएं मगर प्रकृति की बनाई हुई दो चीजें ऐसी हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देती हैं, एक मौत और एक बुढ़ापा। एक मौत और एक बुढ़ापा, ये दो चीजें कभी किसी को धोखा नहीं देती हैं। तुम दोनों को भूल जाओ लेकिन इन दोनों को मालूम है कि तुम कहाँ हो, कौन से गांव में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन से शहर में हो, ये जानते हैं और बिना बुलाए आ जाते हैं। एक मौत एक बुढ़ापा। तो जब बुढ़ापा देखा, शांतनु से प्रतीक ने कहा बेटा अब हमारे ऊपर वृद्धावस्था है, हम तो भजन करेंगे और ये राज्य तुम संभालो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? तो शांतन से बोले सुनो, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन मेरे लाल जब तुम जंगल में जाओगे तो वन में सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है। प्रतीक बताने लगे हैं सुनो मेरे लाल, ये शासन हम तुम्हें देकर के जात हो रहे हैं लेकिन तुम्हारी शादी जिस समय होगी वो वन के बीच में तुम्हें एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी प्राप्त होगी जिससे तुम्हारा विवाह होगा। बोले सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है रे बोई, बनेगी नारी तुम्हारी है। बाई खुश रखियो मेरे पुत्र, जंगल के बीच में तुम्हें एक बहुत सुंदर लड़की मिलेगी और तुम उसी से शादी कर लेना, लेकिन उसे बड़े प्यार से रखना, कभी ऐसी बात ना हो जाए जो वो लड़की तुमसे कहीं रुष्ट ना हो जाए। और मेरा ये अंतिम शब्द है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं और वन में भजन करेंगे भगवान का। अपने पुत्र को समझाने के बाद में
इतनी कह के पुत्र से चल दीने नरपाल, दया मुकुट निज हाथ में चल दीने तत्काल,
शांतनु के सर पे मुकुट उतार करके रख दिया। बेटा संभाल के रखना इस राज सिंहासन को, क्योंकि राजाओं के अंदर 14 दोष हुआ करते हैं और उन दोषों में मत फंस जाना, क्योंकि कारण कुछ और है। कारण यह है मेरे लाल, एक बात चलते चलते हम आपको और समझा दें कि राजा ये सोचा करते हैं कि जग में ऊंचा मेरा नाम नहीं, समझाते हैं कि तुम शासन करो। और महाराज ने तुरंत ही अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बैठा ला, राज मुकुट लेकर के सर पे बांध दिया और अंत में वो अपने साथियों को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके भजन करने के लिए घर से निकल गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि जब शांतनु राजा बन गए वहां के, तो फिर क्या हुआ।
अश्व पे सवार के बढ़े अंगारी, देखी ब्रचन के बीच में एक सुंदर राज दुलारी।
बड़ी दूर से देखा पिताजी जो कह रहे थे कि यही तो लड़की नहीं है। घोड़ा पे सवार शिकार खेलते हुए आगे बढ़े, लेकिन दूर से देखा कि वृक्षों में एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर।
अरे खेल में चले शिकार यश पे सवार, बढ़े अंगारी देखी ब्रचन के बीच में एक सुंदर शिशु कुमारी। और बको सुंदर बदन विशेष खुले है खेस चंद्र युजियन, हाय देखत रह गए भूप आदि विसारी।
जो महाराज शांतन ने दूर से देखा, वो लड़की जो वृक्षों की लताओं में छुपी हुई बैठी है, जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह से दिखाई पड़ रहा है, दूर खड़े हो गए और दूर से उस लड़की को जिस समय देखा तो अपने पिता के वचनों का ध्यान आया। मेरे पिताजी ने ये कहा था कि वन में तुम्हें एक सुंदर सी लड़की मिलेगी और उसके साथ तुम विवाह कर लेना। तो दूर से देखा तो देखते ही रह गए। वो लड़की और लड़की क्या थी,
जा फूलन की रे फूला बारी है, वो शोभा तेरी सुकुमारी है जो। फूलन की रे फूला बारी है, शोभा तेरी राजा दुआरी है शोभा।
सुंदर राज दुलारी जहां फुलबारी के बीच में बैठी हुई नजर आई, दूर से देखते रहे, खड़े रहे। बाद में ध्यान में आया, कहीं ऐसा तो नहीं है इसी से मेरा विवाह हो, कहीं ऐसा तो नहीं है यही मेरी पत्नी बने। और अगर मैंने इससे कुछ कहा, लेकिन एक बात का ध्यान और रखना, एक कभी कह रहा है, महाराज को ध्यान भी नहीं रहा उसके सौंदर्य को निहार करके कि हम खड़े कहां हैं। जिस समय देखती हैं गंगा जी समझ गईं कि झाड़ियों में छुपी ही बैठी थीं, और उन्होंने इशारा करने के बाद जहाँ महाराज बिल्कुल भूले से खड़े हुए थे, उन्हें अपने करीब बुलाया और कहा इधर आ जाइए। मैंने क्या कहा, आप उधर क्यों खड़े हैं, इधर आओ मेरी बात सुन लीजिए।
कि वो समझ ही गई अपने मन में, झट लीने पास
बुलाई है।
महाराज को अपने करीब बुलाया और जवाब दिया, आप यहां बैठे, कहिए घोड़ा से उतर के नीचे आओ ना, आप यहां बैठे, आप बताइए आप कैसे भूले से खड़े के खड़े रह गए, कुछ तो बोलो।
बोले महाराज भुला
करीब बुलाया और जवाब दिया, इधर आ जाइए, कहिए क्या बात है, आप कैसे खड़े के खड़े रह गए। शांतन घोड़ा से उतर के नीचे आए और जवाब दिया, हे देवी माफ करना, तुम्हें निहार करके हम सब कुछ भूल गए और हम तुमसे प्यार की भीख मांगते हैं, तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। किसे कहते हैं गंधर्व विवाह? गंधर्व विवाह कहते हैं जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज। जवाब दिया, तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, माफ कीजिए।
बोले हैं महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु कि मेरे संग में मेरे घर में तुम रहो, ये सीख हमारी है।
जवाब दिया, तुम हमारी पत्नी बनो और तुम उनसे शादी कर लो, क्योंकि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री आज तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम विवाह कर लो मुझसे और मेरे साथ रहो। और बोले कि तुम रहो हमारे
साथ, संग में रहूं तेरे,
बोले
तुम रहो हमारे साथ, संग
जवाब दिया आप हमारे साथ रहें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जवाब दिया तो मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप हमसे विवाह कर लीजिए और आपकी जो इच्छा होगी हम उसकी पूर्ति करेंगे और जीवन भर पत्नी व्रत धारण करेंगे, आप उनसे विवाह कर लीजिए।
वो लड़की कहने लगी, सुनो महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु, शादी तो हम कर लेंगे लेकिन शादी ऐसे नहीं करेंगे।
कैसे होगी? एक मेरी शर्त है।
क्या शर्त है?
तो गंगा जी बोली है, सुनो,
अरे मैं शादी को तैयार, शर्त एक अलग हमारी है, देव तीन बचन महाराज, बचन में नारी तुम्हारी है।
गंगा जी ने उत्तर दिया है, सुनो हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो भी करेंगे उसमें तुम कभी मना नहीं करोगे। हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, हम किसी को मारें चाहे जिंदा करें, किसी का अपमान करें चाहे सम्मान करें, चाहे किसी की भलाई करें चाहे बुराई करें, लेकिन आप बीच में बोलेंगे नहीं।
खड़े खड़े देख के आ रहे हो? हाँ, बोलोगे नहीं।
गलत करें लेकिन आप बीच में टोकेंगे नहीं, और अगर तुमने बीच में टोक दिया मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ करके सदा सदा के लिए संसार से चली जाऊंगी और मैं बाद में तुम्हें कभी जीवन में दर्शन नहीं देंगे। महाराज प्यार में इतने अंधे हो गए, उस सूरत पे इतने बलिहार हो गए कि सब कुछ भूल गए। जवाब दिया, ठीक है मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, तुम जो कहोगी हम उसके पीछे रहेंगे, तुम जो करोगी बस वही हम करेंगे, लेकिन तुम केवल मुझसे शादी कर लो,
क्योंकि तुम बिना नहीं जी पाऊंगा रे, नहीं घर में भोजन खाऊंगा रे।
करोगी हम उसमें कभी बीच में दखल नहीं डालेंगे, जो तुम करोगी बस वो ही हमें मंजूर होगा, लेकिन तुम उनसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, आप मेरे साथ चलो। हुआ ऐसा, वन में शांतनु के साथ में गंगा जी का गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्यार में शादी, लव मैरिज। हुआ ऐसा, बाद में
बोले हैं शांतनु चलो हमारे साथ में, अरे हर बात हमें मंजूर है, तुमसे दूरी रहो ना जाई, और जो कछ तुम कुछ कहे और एक है वोई संग समाई।
आप जो कुछ कहेंगी उसी में हम साथ देंगे आपका।
और बोले हैं शांतनु हंसी खुशी से ले गए संग बुलाए, हाय हंसी खुशी से ले गए संग बुलाए,
देखिए परमेश्वर की गति। जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ श्राप था शांतनु को, वो गंगा जी को अपने साथ बुला करके घर पे लाए हैं और गंगा जी के साथ रहने लगे हैं। विवाह हुआ और गंधर्व जब विवाह हुआ और फिर साथ रहने लगे, धीरे 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 समय गुजरता चला गया और एक दो दिन नहीं वर्षें बीत गई, लेकिन गंगा जी के प्यार में इतने अंधे हो गए।
क्यों?
माफ करें, अब हम थोड़ी पौराणिक बात करने के लिए जा रहे हैं। गंगा जी जब शादी करने के लिए आई थी तो वशिष्ठ ने जो श्राप दिया था 8 वसुओं को कि तुम्हें भूतल पे प्रकट होना पड़ेगा, तो उन 8 ने आकर के गंगा जी से अनुरोध किया है। तो गंगा जी ने ये कहा है, हे वसु तुम चिंता मत करो, हम जन्म लेते ही लेते तुम्हें जल में डाल देंगे और तुम्हें मार देंगे, श्राप से उद्धार तुम्हारा हो जाएगा। ये कहकर के गंगा जी आई थी। अब गंगा जी इधर जब रहने लगी हैं शांतनु के साथ में पत्नी बन करके,
अरे कर गंगा से प्यार रे, आंगन में समय बितायो,
धीरे 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 गंगा जी के गर्भ से पहले बालक का जन्म होता है, और जब पहले बेटे का जन्म हुआ है
जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, और जब पुत्र का जन्म हुआ तो महाराज शांतनु बड़े खुश हुए। आंगन में बधाई बज रही है, औरतें नाच रही हैं, लेकिन उन औरतों को छोड़ करके गंगा जी ने उस मासूम बच्चे को उठाया और उठा करके धीरे धीरे चल पड़ी। और जब चल पड़ी तो शांतनु पीछे पीछे चले कि ये गंगा कहां जाएगी, ये क्या करेगी। धीरे 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 बढ़ते चले गए, गंगा जी आगे आगे हैं, पुत्र को गोद में लिए हुए शांतनु पीछे पीछे जा रहे हैं। बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर बोलेंगे उसी दिन गंगा छोड़ के चली जाएगी।
इसलिए बोल नहीं रहे हैं, पीछे पीछे देख रहे हैं गंगा जी ने क्या किया। चलती चली गई जहां गंगा की धार बह रही है, वहां पहुंच गई। और वहां पहुंचने के बाद
उन दिनों को मारू बहाई है रे दादा, फूप गए थे कहलाई है रे जमा। दिनों को मारू बहाई है,
कैसी थी मां की ममता, अरे वो ममता कहां रही। जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया वही मां मां नहीं नागिन बन गई, अपने बच्चे को जल की धार में बहा दिया।
परमेश्वर की गति, घर में बधाई बज रही है, उस बधाई को छोड़ करके गंगा ने अपने पत्र को उठाया और ले जा करके गंगा की धार में जल में बहा दिया। शांतनु खड़े दूर देखते रह गए,
कैसी माँ है
ये, कैसी माँ है
जिस माँ ने अपने पुत्र को जल में बहा दिया, मार दिया। कहाँ अपने पुत्र को माँ आशीर्वाद दिया करती है,
हजारों साल की उम्र देने की कामना किया करती है,
लेकिन ये भी एक माँ है जिसने अपने पुत्र को अपने हाथों से मार दिया। मगर कुछ बोले कैसे, अगर हम कुछ बोलते हैं तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाएगी। चुपचाप चले आए, लौटे आए घर पे, फिर एक ही नहीं इसी तरह से गंगा जी ने
एक एक कर मातने मारे बेटा सात,
एक नहीं सात पुत्रों को जन्म दिया और सातों अपने हाथ से मार दिए।
एक एक कर मात ने मारे बेटा सात, फिर भी शांतनु भूप ने छोड़ो नहीं साथ।
वे औरत के प्यार में इतने पागल थे कि वो कुछ भी नहीं बोल सके, विधि का विधान कुछ और बना,
सात बेटा मार दिए। और जब सातों पुत्रों को मार दिया, अंत में आठवें पुत्र का नंबर आया, तो महाभारत में जो हमें प्रमाण मिला, आइए गौर करते हैं।
अरे भाव आठमो बेटा रे महाराज मगन दिल भारी, अरे भवो बेतारे महाराज मगन दिल भारी, माता निर्माता बन गई रे, माता निर्माता लयो यो तारी।
परमेश्वर की गति। आठवां पुत्र जिस समय पैदा हुआ है बुद्धव नाम का बसु, जब आठवें पुत्र के रूप में आता है, गंगा ने उस पुत्र को भी उठाया जो सात पुत्र बहा दिए थे, उसी तरह से लेकर के चल पड़ी। सांतन पीछे पीछे चले, कुछ नहीं बोले, रोते हुए जा रहे हैं। औरत के प्यार में इतने अंधे थे जो कुछ बोल नहीं सके, लेकिन गंगा जी ने जिस समय उस पुत्र को जल में डुबोना चाहा, सांतन कहने लगे, ठहरा, अरे कैसी है तू माँ, माँ अपनी संतान के पीछे सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, माँ अपने पुत्र के पीछे जान तक देने के लिए तैयार हो जाती है, मगर कैसी है तू माँ जो एक माँ होने के बाद भी अपने पुत्र की जान ले लेती है। क्योंकि मैं तुम्हारे वचनों से घिरा हुआ हूँ, इसलिए बोल नहीं पाता हूँ। सात पुत्र तुमने अपने मार दिए, केवल मुझे एक सवाल का उत्तर दे दो गंगा, केवल एक सवाल का उत्तर दे दो, तू कैसी निर्दयी मात, अरे तेरे दयान दिल में आई रे, अरे कैसी निर्दयी मात, दया तेरे नेक न दिल में आई रे, जिने दया तूने जन्म के गंगा